आगे सबक देखिए भाई, वहादा बिखिलाफी मा इदा काला लि गैरिही कतअतु यदका फअखरजहुमा सहीहतैन हैसु लम युजअल मजाज़न अनिल इक़रारि बिल माल वल्तिज़ामिही व इन कानल क़त्उ सबबन लिवुजूबिल माल لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش وأنه يخالف مطلق المال في الوصف حتى وجب على العاقلة في سنتين. بے گزشتہ سبق میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ندا دیتا ہے ابن کے لفظ کے ساتھ کہ یا بنو اے بیٹے, तो यहां इबन का लफ्ज बगैर इजाफत के है और आपने पढ़ा है कि जब निदा वसफ के साथ दी जाए तो दरअसल यहां मुनादा को यह खबर दी जा रही होती है कि इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ. तो यहां पर जब आका ने अपने गुलाम को निदा दी या बनो ए बेटे, यानी इस वसफ के साथ मेरे सामने हाजिर हो जाओ, यानी ये खबर दी है कि मेरे इस मुनादा के अंदर ये वाला वसफ पाया जा रहा है और मामला भी ऐसा ही है. आका ने जिस वसफ की खबर दी है वो इस गुलाम के अंदर पाया जा रहा है, आका ने उसे बेटा कहा है और मामला भी ऐसा ही है जैसा आका ने जिक्र किया. ये गुलाम भी अपने बाप का बेटा है तो बेटा होने के वसफ के साथ वो गुलाम हाजिर हो जाएगा तो गुलाम आजाद नहीं होगा. और इसी तरह अगर आका ने तस्गीर इस्तेमाल की या बुनैयो, या बांदी को निदा दी या बुनैयतु, तो इस सूरत के अंदर भी गुलाम या बांदी आजाद नहीं होंगे क्योंकि मामला ऐसा ही है जैसा आका खबर दे रहा है. या बुनैयु का माना है ऐ प्यारे बेटे और या बुनैयतु का माना है ऐ प्यारी बेटी. और जैसे आका ने खबर दी मामला भी वैसा ही है, ये गुलाम और बांदी किसी के बेटा और बेटी हैं भाई. और उसके बाद फिर मसला जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि अगर आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हाजबनी, ये मेरा बेटा है, तो इस सिलसिले में दो सूरतें बनती हैं कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है या नहीं हो सकता. अगर इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा हो सकता है तो ये मसला गुज़श्ता से पैवस्ता सबक के अंदर बयान हुआ था कि इस सूरत के अंदर गुलाम आजाद हो जाएगा और अगर उस गुलाम का नसब किसी से साबित नहीं है तो नसब भी आका से साबित हो जाएगा. लेकिन यहां कल के सबक में हमने जो पढ़ा, आका ने गुलाम के बारे में कहा हाजबनी, और ये जो गुलाम है ये इतनी उम्र का है कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता, यानी गुलाम तकरीबन आका का हम उम्र है या गुलाम उम्र में आका से बड़ा है. तो अब हाजबनी यहां हकीकी माना तो मुमकिन नहीं क्योंकि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बेटा नहीं हो सकता. तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस सूरत में इस कलाम का मजाजी माना मुतायन है और यह गुलाम आजाद हो जाएगा. हाजबनी इसका हकीकी माना क्या कि यह मेरा बेटा है और इसका मजाजी माना है हादा हुर्रुन, ये आजाद है. तो इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां हकीकी माना तो मुमकिन नहीं है लिहाजा मजाजी माना मुतायन है लिहाजा ये गुलाम आजाद हो जाएगा. जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये गुलाम आजाद नहीं होगा, आका का ये कलाम लग्व है, बेकार है, बातिल है. और इमाम शाफई रहमहुल्ला का भी यही मजहब है जो साहिबैन का है, वो भी फरमाते हैं कि यह गुलाम आजाद नहीं होगा. और फिर इस इख्तिलाफ की वजह मैंने जिक्र की थी कि यह साहिबैन और इमाम साहिब में यह इख्तिलाफ क्यों है. मैंने बताया था कि एक है लफ्ज का हकीकी माना और एक है उसका मजाजी माना. लफ्ज को जिस माना के लिए वजह किया जाए और मुकर्रर किया जाए वो उसका हकीकी माना है. जैसे शेर का लफ्ज उर्दू जुबान में एक जंगली दरिंदे के लिए वजह है, लेकिन इसी लफ्ज को बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है. कोई बहादुर आदमी हो तो कहते हैं वो शेर है. तो ये इसका मजाजी माना है। तो इमाम साहब और साहिबैन का इस बात में तो इत्तेफाक है कि ये जो मजाज है ये हकीकत का खलीफा है, ये हकीकत का नाइब है। जब तक हकीकी माना मुमकिन हो हकीकी माना पर ही अमल किया जाएगा। हां, जब हकीकी माना मुमकिन न रहे या कोई रुकावट वहां आ जाए, कोई मानिया आ जाए कि हम हकीकी माना नहीं कर सकते, तो फिर हम मजाज की तरफ जाएंगे और फिर उस कलाम का मजाजी माना किया जाएगा। भाई बात समझ में आ गई। तो इमाम साहेब और साहिबैन का इस बात में तो इत्तेफाक है कि ये जो मजाज है ये हकीकत का नाइब है और खलीफा है। लेकिन ये किस एतबार से हकीकत का खलीफा है, इसमें इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो मजाज है ये हुक्म के अंदर हकीकत का नाइब है और उसका खलीफा है। मजाज हुक्म में हकीकत का नाइब है। मैंने बताया था हुक्म का माना है बात। वही मसलन मैंने कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, तो इल्मी अंदाज में कहेंगे कि जैद पर आलिम होने का हुक्म लगाया गया, और इसी को सादा जुबान में यूं कहेंगे कि जैद के बारे में आलिम होने की बात की गई। तो हुक्म का क्या माना है बात, बल्कि और ज्यादा आसान अल्फाज में यहां हुक्म का तर्जमा माना के साथ कर लें। तो साहिबैन फरमाते हैं कि जो मजाज है ये माना के एतबार से हकीकत का खलीफा है। अगर हकीकी माना कलाम का सही है तो फिर ही हम मजाजी माना की तरफ जा सकते हैं, और अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है तो फिर मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता। इसलिए क्योंकि जहन में पहले हकीकी माना आता है और उसके बाद जहन मुंतकिल होता है मजाजी माना की तरफ, तो जहां हकीकी माना का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता वहां मजाजी माना का भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। तवज्जो है, मैंने बतलाया था कि देखो ये जो मजाज है ये नाइब है हकीकत का, यानी इसने उसी जगह आना है जो हकीकत की जगह होती है। एक मकाम पर हकीकी माना सही तो है लेकिन कोई माने आ गया, कोई रुकावट आ गई कि वहां हकीकी माना नहीं किया जा सकता, तो फिर मजाजी माना की तरफ हम चले जाएंगे। और ये मजाजी माना किसकी जगह आया, हकीकी माना की जगह पर आया, क्योंकि ये उसका नाइब है भाई, और नाइब तो वहीं आ सकता है जहां असल आ सके। जैसे देखो बादशाह है किसी मुल्क का, बादशाह अगर मसलन किसी सफर पर चला जाए या हज वगैरह पर चला जाए तो वो अपने पीछे नाइब बनाकर जाता है, तो ये नाइब किसकी जगह पर आया, बादशाह की यानी असल की जगह पर आया। और एक मकाम वो है कि जहां असल की जगह ही नहीं है, असल आ ही नहीं सकता, वहां नाइब कैसे आ सकता है। इसको और बेहतर अंदाज में यूं समझो कि मसलन असल एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, मालूम हुआ ये असल का मकाम है, असल यहां से उठकर चला जाएगा तो इस कुर्सी पर नाइब आकर बैठ जाएगा। अगर एक मकाम पर असल की कुर्सी नहीं है, असल ही नहीं आ सकता, तो वहां नाइब कहां से उसकी जगह पर आएगा, वहां तो जगह ही नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा साहिबैन फरमाते हैं कि ये जो मजाज है ये माना के एतबार से हकीकत का नाइब है। अगर हकीकी माना मुमकिन होगा तो मजाजी माना भी हो सकता है, अगर हकीकी माना मुमकिन ही नहीं तो मजाजी माना भी नहीं हो सकता। और यहां पर जो आका ने अपने गुलाम से कहा हाजबनी, ये मेरा बेटा है, लेकिन ये गुलाम तो आका का हम उम्र है या उससे उम्र में बड़ा है, इस जैसे गुलाम का तो आका का बेटा होना मुमकिन ही नहीं है। तो जब हकीकी माना मुमकिन नहीं है तो मजाजी माना कि ये आजाद है ये भी यहां नहीं किया जा सकता, तो आका का ये कलाम लग्व चला जाएगा और गुलाम आजाद नहीं होगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो मजाज होता है ये तकल्लुम के अंदर हकीकत का खलीफा है। तकल्लुम का माना है गुफ्तगू करना, बातचीत करना, यानी अल्फाज मुराद हैं, यानी अल्फाज को देखा जाएगा। अगर वो अल्फाज अरबी एतबार से ठीक हैं और हकीकी माना नहीं किया जा सकता तो फिर मजाजी माना की तरफ हम चले जाएंगे। तो इमाम साहब के नजदीक मजाज हकीकत का खलीफा है तकल्लुम में, यानी अल्फाज के एतबार से। तो साहिबैन की दलील चल रही है, साहिबैन फरमाते हैं कि हकीकी माना मुमकिन हो तो फिर ही मजाजी माना किया जा सकता है। चुनांचे इसीलिए अगर कोई शख्स अपने गुलाम को कहे आतक्तुका क़ब्ल अन उखलका, कि मैंने तुझे आजाद कर दिया अपने पैदा होने से पहले ही, और या उसको कहता है आतक्तुका कबला अन तुखलका, कि मैंने तुझे आजाद कर दिया तेरे पैदा होने से पहले ही। तो इस सूरत में अब यह कलाम अरबी एतबार से बिल्कुल सही है, अरबी एतबार से यह कलाम बिल्कुल सही है, लेकिन इसका हकीकी माना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई शख्स पैदाइश से पहले दूसरे को आजाद नहीं कर सकता। तो इमाम साहब के जाब्ते को अगर लिया जाए तो ये जो कलाम है आतक्तुका कबला अन उखलका या कबला अन तुखलका, ये अरबी एतबार से बिल्कुल सही कलाम है। तो जब अरबी एतबार से सही है और हकीकी माना मुमकिन नहीं है, तो इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक अब इसका मजाजी माना लेना चाहिए। इसका मजाजी माना यह है कि जब से मैं तुम्हारा मालिक बना हूं तुम आजाद हो, जब से मैं तुम्हारा मालिक बना हो तुम आजाद हो। लेकिन यहां इमाम साहब भी फरमाते हैं कि यह कलाम लग्व है और बेकार है, इसका मजाजी माना नहीं किया जा सकता। तो साहिबान फरमाते हैं बात वही है जो हमने जिक्र कर दी कि हकीकी माना मुमकिन ना हो तो मजाजी माना नहीं किया जाएगा। यहां भी इन लफ्जों का हकीकी माना मुमकिन नहीं है, लिहाजा मजाजी माना इमाम साहब भी फरमाते हैं यहां नहीं किया जाएगा। और फिर मैंने जवाब जिक्र किया था इमाम साहब की तरफ से कि इमाम साहब फरमाते हैं कि सिर्फ अल्फाज को नहीं देखेंगे बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वो माना अकलन मुमकिन हो, और ये जो कलाम है इसका माना अकलन मुमकिन ही नहीं है, कोई शख्स पैदाइश से पहले दूसरे को आजाद नहीं कर सकता। तो जब यह अकलन ही मुमकिन नहीं है तो लिहाजा इसलिए इसका मजाजी माना भी नहीं किया जाएगा। जबकि वो जो आका ने अपने गुलाम से कहा है हाजबनी, ये कलाम अकलन मुमकिन है। यहां सिर्फ जो मान्य आया वो इस मुशारुन इले गुलाम की वजह से आया, आका एक ऐसे गुलाम की तरफ इशारा करके हाजबनी कह रहा है कि इस जैसा गुलाम इस आका का बेटा नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह कम उमर गुलाम होता या आका का अपना बेटा होता तो आका कह सकता था हाजबनी ये मेरा बेटा है। तो मालूम हुआ हाजबनी ये अकलन मुमकिन है, यहां मान्य जो आया वो सिर्फ मुशारुन इले की वजह से आया, और जब कलाम अकलन मुमकिन हो लेकिन उसका हकीकी माना पर अमल न हो सके तो मजाजी माना की तरफ जाएंगे, तो इसलिए यहां हम मजाजी माना की तरफ चले गए। जबकि आतक्तुका कबला अन उखलका ये तो अकलन ही मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसलिए यहां इसका मजाजी माना भी नहीं किया जाएगा। और नीज हकीकत और मजाज में कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए, हकीकी माना और मजाजी माना में कोई ना कोई ताल्लुक और रब्त होना चाहिए, और ताल्लुक और रब्त अगर नहीं है तो फिर वहां मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हकीकी और मजाजी माना में कोई रब्त ही ना हो, कोई ताल्लुक ही ना हो। मसलन आप लफ्ज जिक्र करते हैं बकरी और इरादा करते हैं हाथी का, तो यह माना सही नहीं है, इसलिए क्योंकि बकरी और हाथी के दरमियान कोई रब्त और कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि यहां पर हाजबनी बेटा होने और आजादी के दरमियान रब्त और ताल्लुक है दो एतबार से। एक तो यह कि ये बेटा होना यह सबब है आजादी का, ममलूक के अंदर गुलाम के अंदर बेटा होने का वसफ साबित हो जाए तो गुलाम आजाद हो जाता है, वो ममलूक आजाद हो जाता है, इस पर इजमा है उम्मत का। मसलन आका की बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया और आका ने कहा ये मेरा बच्चा है, तो बिल इजमा ये बच्चा आजाद होगा। तो ममलूक के अंदर जब भी बेटा होने का वसफ साबित होगा तो वो ममलूक आजाद होगा। तो मालूम हुआ बेटा होना सबब है आजादी का। तो यहां पर भी हाजा बनी जिक्र किया सबब को और इरादा किया मुसबब यानी आजादी का। या नीज यहां पर बेटा होने और आजादी के दरमियान लुजूम वाला ताल्लुक भी है, क्योंकि बेटा होने के साथ आजादी लाजिम है। जिस ममलूक के अंदर भी, जिस गुलाम के अंदर भी बेटा होने का वसफ साबित होगा तो उसके साथ लाजिम है कि उसमें आजादी भी साबित हो जाएगी। तो हकीकी और मजाजी माना में रबत और ताल्लुक जरूरी है, और यहां पर भी बेटा होने और आजादी के दरमियान सबबियत वाला ताल्लुक भी है और लुजूम वाला ताल्लुक भी है। तो दो हलाके मौजूद हैं, तो दो हलाके और दो ताल्लुक मौजूद हैं हकीकी और मजाजी माना में। लिहाजा जब हकीकी माना मुमकिन नहीं है तो कलाम को लग्व होने से बचाने के लिए, कलाम को बातिल होने से बचाने के लिए उसका मजाजी माना किया जाएगा, उसका मजाजी माना किया जाएगा, क्योंकि फुकहा की कोशिश होती है कि आकिल बालिग आदमी का जो कलाम है उसको बातिल होने से, उसको बेकार होने से बचाया जाए। तो यहां पर भी इस साका के कलाम को बातिल होने से बचाने के लिए उसका अब मजाजी माना किया जाएगा। जबकि आतकतु का कबला अन उखलका या कबला अन तुखलका, ये इसका हकीकी माना क्या कि मैंने तुम्हें आजाद किया अपनी पैदाइश से पहले या तुम्हारी पैदाइश से पहले, और इसका मजाजी माना आप क्या करना चाहते हैं कि मैं जब से तुम्हारा मालिक बना हूं तुम आजाद हो, मैं जब से तुम्हारा मालिक बना हूं तुम आजाद हो। तो ये जो दो मानी हैं, एक हकीकी माना और एक मजाजी माना, यहां पर इन दोनों में कोई रब्त और कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के मुनाफी हैं। भाई हकीकी माना क्या कि मैंने तुमको आजाद किया अपने पैदा होने से पहले या तुम्हारे पैदा होने से पहले, भाई पैदाइश से पहले तो कोई किसी का मालिक नहीं हो सकता। तो ये कलाम तकाजा करता है आदम मिल्कियत का कि ये इस गुलाम का मालिक ही नहीं। और इसका जो मजाजी माना है कि जब से मैं तुम्हारा मालिक बना हूं तब से तुम आजाद हो, ये जो मजाजी माना है ये तकाजा कर रहा है मिल्कियत का कि जब से मालिक बना हूं तुम आजाद। तो हकीकी माना तकाजा कर रहा है आदम मिल्कियत का, और मजाजी माना तकाजा कर रहा है मिल्कियत का, और मिल्कियत और आदम मिल्कियत इन दोनों में तो मुनाफात है। एक वक्त में एक चीज हो सकती है, मिल्कियत है तो आदम मिल्कियत नहीं, और आदम मिल्कियत है तो मिल्कियत नहीं है। तो जब हकीकी और मजाजी माना में कोई मुनासिबत नहीं है बल्कि दोनों के दरमियान मुनाफात है, तो जब मुनाफात है तो फिर कैसे इसका मजाजी माना किया जा सकता है। तो लिहाजा इस कलाम का लग्व होना ही मुतायन है। आतकतु का कबला अन उखलका या कबला अन तुखलका, यहां हकीकी माना भी मुमकिन नहीं और मजाजी माना के साथ इसका कोई रब्त और ताल्लुक भी नहीं बनता, तो दोनों में से कोई एक माना भी यहां नहीं किया जा सकता, तो इस कलाम को बातिल ही करार देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वहाजा बिखिलाफी मा इदा काल ली गैरी ही कता तु यद कफा अखरज हुमा सही हतैन हैसु लम युजअल मजाजन अनिल इकरार बिल माली वल्तिजामी ही व इनकान अलकतु सबबन लिवजूबिल माल। यहां से साहिब हिदाया जवाब दे रहे हैं साहिबैन के एक और कियास का। साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से साहिबैन के एक कियास का जवाब दे रहे हैं। साहिबैन ने यह जो मसला जिक्र हो रहा है, आकान ने अपने हम उमर या अपनी से उमर में बड़े गुलाम से कहा हा जबनी, साहिबैन कहते हैं ना इसका हकीकी माना किया जा सकता है और ना इसका मजाजी माना, यह कलाम लग्व है बेकार है। और साहिबैन इसको कियास करते हैं एक और मसले पर। सूरत यह कि एक आदमी दूसरे आदमी के पास गया और जाकर उससे कहा कतअतु यदका, मैंने तेरा हाथ काट दिया, मैंने गलती से तुम्हारा हाथ काट दिया। उस दूसरे शख्स ने अपने दोनों हाथ निकाल कर दिखाए, वो तो सही सलामत थे। तो यहां पर साहिबैन फरमाते हैं कतातु यदका, इसका हकीकी माना यह है कि मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया। तो हकीकी माना तो यहां मुमकिन नहीं क्योंकि दूसरे शख्स के दोनों हाथ सही सलामत हैं। और कतातु यदका मजाजी माना यह है कि वह शख्स माल का इकरार कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब किसी का हाथ कोई गलती से काट दे तो उस पर निस्फ दियत आती है, भाई उस पर निस्फ दियत आती है। तो लिहाजा कतातु यदा का इसका हकीकी माना यह है मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया, और इसका मजाजी माना यह है कि गोया वो कहने वाला माल का इकरार कर रहा है। तो यहां पर हकीकी माना मुमकिन नहीं क्योंकि उस दूसरे शख्स के तो दोनों हाथ सही सलामत हैं, तो लिहाजा इसका मजाजी माना इसका करना चाहिए क्योंकि अरबी एतबार से ये अल्फाज बिल्कुल सही हैं। कतअतु यदका, मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया, तो अरबी एतबार से ये कलाम बिल्कुल सही है। और नीस ये हाथ का काटना ये सबब होता है निस्फे दियत के वाजिब होने का, तो यहां सबबियत वाला अलाका और ताल्लुक भी मौजूद है। तो लिहाजा इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक जब अल्फाज सही हों और हकीकी और मजाजी माना के दरमियान रबत और ताल्लुक भी मौजूद हो लेकिन हकीकी माना न किया जा सके तो फिर मजाजी माना मुराद लिया जाता है। लिहाजा इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक इस शख्स पर निस्फ दियत वाजिब होनी चाहिए, इसने इतने माल का इकरार कर लिया है। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इस शख्स पर कोई माल वाजिब नहीं होगा। तो साहिबैन फरमाते हैं देखो इससे हमारे मजहब की ताइद हो गई। इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक अल्फाज भी सही हैं और हकीकी और मजाजी माना में रबत भी मौजूद है और हकीकी माना मुमकिन ना हो तो फिर मजाजी माना मुराद लेना चाहिए। लेकिन इमाम साहब भी यहां फरमाते हैं कि यहां मजाजी माना नहीं लिया जाएगा और इस शख्स पर माल लाजिम नहीं होगा। मालूम हुआ बात वही है जो हमने की। साहिबैन फरमाते हैं कि जब हकीकी माना मुमकिन ना हो तो मजाजी माना की तरफ नहीं जाएंगे। यहां भी कतअतु यदक, मैंने तेरा हाथ काट दिया, हकीकी माना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि दूसरे आदमी के तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। जब हकीकी माना मुमकिन नहीं है तो मजाजी माना भी मुराद नहीं ले सकते। इसीलिए इमाम साहिब भी इस मसले में फरमाते हैं कि इस शख्स पर निस्फ दियत यानी अर्श वाजिब नहीं होगा। साहिबैन का इस्तेदलाल समझ में आया तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया। जवाब से पहले दो चार बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। भाई याद रखो, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को गलती से कत्ल कर दे तो वो जो कातिल है उस पर दियत लाजिम होगी। उस कातिल पर दियत लाजिम होगी यानी उसको 100 ऊंट अदा करने पड़ेंगे, या अगर वो दिरहम अदा करना चाहता है तो 10,000 दिरहम अदा करने पड़ेंगे, और अगर वो दीनार अदा करना चाहता है तो 1,000 दीनार अदा करेगा। और नीज याद रखना, ये जो दियत है ये अकेले कातिल पर नहीं आती बल्कि उसके सारे कबीले पर ये दियत वाजिब होगी। सारे कबीले वाले मिलकर ये दियत अदा करेंगे और ये उनका इख्तियार है कि वो चाहें तो 100 ऊंट अदा करें, वो चाहें तो 10,000 दिरहम अदा करें, और वो चाहें तो 1,000 दीनार अदा करें। ये उनकी मर्जी है भाई। और नीज ये भी याद रखना कि ये जो दियत है ये 3 साल के अरसे में अदा की जाती है। 3 साल के अरसे में 3 किस्तों के अंदर वो इस दियत को अदा करेंगे, गोया हर साल के अंदर 1/3 माल उनको अदा करना है। 1/3, 1/3 माल अदा करना है, दूसरे साल में भी 1/3 और तीसरे साल में भी 1/3। इस तरह 3 सालों के अंदर ये माल अदा किया जाएगा और सारा कबीला मिलकर इस माल को अदा करेगा। और फिर ये याद रखना कि पूरी जाते इंसानी के बदले में जो माल वाजिब होता है उसको तो दियत कहते हैं, लेकिन आजा के अंदर जो माल वाजिब होता है उसको अर्श कहते हैं। हमजा राशीन अर्श, तो पूरी इंसानी जान का बदल वो दियत कहलाता है, यानी 100 ऊंट हैं या 10,000 दिरहम हैं या 1,000 दीनार हैं। जबकि पूरी जान से कम जो माल वाजिब होता है यानी आजा के अंदर हाथ काट दिया या पांव काट दिया वगैरह, तो उसमें जो माल वाजिब होता है उसको अर्श कहते हैं। तो हाथ का अर्श कितना है? निस्फ दियत है, यानी पूरी दियत 100 ऊंट है तो उसका निसफ कर लें तो हाथ के अंदर एक हाथ किसी ने किसी का गलती से काट दिया तो 50 ऊंट अदा करने पड़ेंगे मुजरिम को, या दिरहम अदा करना चाहता है तो उसको भी निसफ कर लें, 5,000 दिरहम अदा करने पड़ेंगे, और अगर वो दीनार अदा करना चाहता है तो उसका भी निसफ कर लें यानी 500 दीनार अदा करने पड़ेंगे, और इसके अंदर सारा कबीला उसके साथ शरीक होगा। तो सारा कबीला इसके अंदर भी शरीक होगा, और तो उस शख्स पर निस्फ दियत यानी अर्श वाजिब होगा और सारा कबीला अदा करेगा। और नीज याद रखना ये 2 साल में अदा किया जाएगा। 1 साल में ज्यादा से ज्यादा जो अदायगी वाजिब होती है वो सुलुस दियत, और निसफ तो सुलुस से ज्यादा है, निसफ तो सुलुस से ज्यादा, लिहाजा हाथ काटा गलती से निस्फ दियत यानी 50 ऊंट आ गए या 5,000 दिरहम आ गए, तो ये 5,000 दिरहम में से सुलुस जो है यानी 10,000 का सुलुस वो पहले साल में अदा करेंगे और बाकी दूसरे साल में अदा किया जाएगा। तो मालूम हुआ ये 2 साल में ये अर्श अदा किया जाएगा। तफसील समझ में आ गई। अब एक और बात याद रखना, जब कोई शख्स इकरार करता है, मसलन जैद ने कहा मैंने अमर का 1,00,000 रुपया देना है, तो याद रखो ये जो माल लाजिम हुआ है ये सिर्फ जैद पर लाजिम हुआ है, इसमें उसके कबीले वाले उसके साथ मिलकर अदायगी नहीं करेंगे। तो लिहाजा जब कोई शख्स माल का इकरार करता है तो उस पर मुतलकन माल वाजिब होता है और वो सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है, उसके कबीले वाले अदायगी में साथ शरीक नहीं होंगे भाई। जबकि इसके मुकाबले में जब कोई शख्स जिनायत करता है, किसी को कत्ल करता है गलती से, या उसके हाथ या पांव वगैरह को गलती से काट दिया, तो इस सूरत के अंदर जो माल वाजिब होता है ये उसके सारे कबीले पर वाजिब होगा। बात समझ में आ गई? तो बात चल रही थी, साहिबैन ने हाजा बनी वाले मसले को कियास किया कतातु यदा का इस मसले पर। भाई साहिबैन फरमाते हैं इमाम साहब के जाब्ते के मुताबिक कतातु यदा का इसका हकीकी माना तो मुमकिन नहीं, लिहाजा इसका मजाजी माना करना चाहिए। और मजाजी माना क्या है? वो शख्स निस्फे दियत का इकरार कर रहा है कि मैंने इस आदमी का इतना माल अदा करना है। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, जवाब ये कि यहां पर कलाम का मजाजी माना नहीं किया जा सकता। वजह यह कि हाथ के काटने की वजह से दूसरे शख्स पर मुतलक माल वाजिब नहीं होता, बल्कि माल मखसूस वाजिब होता है, एक खास किस्म का माल वाजिब होता है। और यह माल अपने वसफ के अंदर माल मुतलक से अलग है। माल मुतलक जब किसी शख्स पर वाजिब होता है तो वो सिर्फ उसी आदमी को अदा करना पड़ता है। जैद ने कहा मैंने अमर के 10,00,000 रुपए अदा करने हैं, तो ये जैद ही को अदा करने पड़ेंगे। जबकि हाथ काटने की वजह से, जिनायत की वजह से जो माल अदा करना पड़ता है उसका वसफ ही अलग है, वो सारे कबीले वालों को मिलकर अदा करना पड़ता है। तो लिहाजा ये जो इस शख्स ने जुमला कहा कतातु यदका, मैंने तेरा हाथ काट दिया, और आप इसका मजाजी माना क्या करना चाहते हैं कि गोया ये शख्स मुतलक माल का इकरार कर रहा है? नहीं भाई, कतातु यदका इसकी वजह से मुतलक माल वाजिब ही नहीं होता, इसकी वजह से माल मखसूस वाजिब होता है। इसकी वजह से माले मखसूस वाजिब होता है, और माले मखसूस को इस आदमी पर वाजिब नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने तो हाथ काटा ही नहीं। इसकी वजह से तो अर्श वाजिब होता है, कतातु यदका इसकी वजह से तो अर्श वाजिब होता है, और अर्श तो तब वाजिब होगा जब किसी ने की हकीकत में किसी का हाथ काटा हो, और यहां तो इसने इसका हाथ काटा ही नहीं, लिहाजा अर्श को इस पर वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। और मुतलक माल तो इसलिए वाजिब नहीं हो सकता क्योंकि कतातु यदका ये मुतलक माल का सबब ही नहीं है भाई, ये तो माल मखसूस का सबब है, और माल मखसूस को भी वाजिब करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसने उसका हाथ काटा ही नहीं, उसके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। तो वो अर्श वैसे वाजिब नहीं होता, वो मखसूस माल है, वो हाथ काटने से ही साबित होता है, और हाथ तो काटे नहीं, लिहाजा अर्श को वाजिब करार नहीं दिया जा सकता, और मुतलक माल को भी वाजिब करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि कतातु यदका इसकी वजह से मुतलक माल तो वाजिब होता ही नहीं, इसकी वजह से माल मखसूस वाजिब होता है, और माले मखसूस यहां वाजिब नहीं हो सकता क्योंकि इसने उसका हाथ काटा ही नहीं है। लिहाजा इसलिए इस कलाम का हकीकी माना भी सही नहीं क्योंकि उसके दोनों हाथ सही सलामत हैं, और मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मजाजी माना करेंगे तो अर्श वाजिब करना पड़ेगा, और अर्श तो बगैर हाथ काटे किसी पर वाजिब नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वहादा बेखिलाफी मा इदा काल अली गैरी ही, और यह मसला बरखिलाफ है उस सूरत के जब किसी शख्स ने दूसरे से कहा कतातु यदका कि मैंने तेरा हाथ काट दिया, फअखरजहुमा सहीहतैनी, तो उस शख्स ने अपने दोनों हाथ निकाले इस हाल में कि वो सही सलामत थे, हैसु लम युजअल मजाजन अनिल इकरार बिल माली वल्तिजामी ही, क्योंकि इसको ये जो उसने कहा है, ये जो उसने कहा है कतातु यदका, इसको मजाज करार नहीं दिया जा सकता अनिल इकरार बिल माली, इकरार बिल माल से, वल्तिजामी ही, और माल को अपने ऊपर लाजिम करने से। साहिब हिदाया जवाब दे रहे हैं इमाम साहिब की तरफ से, साहिबैन ने हाजबनी वाले मसले को कियास किया कतातु यदका वाले मसले पर, कि जैसे हाजबनी के अंदर हकीकी माना मुमकिन नहीं तो मजाजी माना इमाम साहिब लेते हैं क्योंकि अल्फाज सही हैं। तो यहां कतातु यदका के अंदर भी अल्फाज सही हैं, तो यहां भी इमाम साहब को मजाजी माना करना चाहिए, लेकिन इमाम साहब मजाजी माना नहीं करते इसको, इसको इकरार बिल माल करार नहीं देते। मालूम हुआ बात हमारी सही है कि हकीकी माना मुमकिन ना हो तो मजाजी माना नहीं किया जा सकता। तो साहिब हिदाया जवाब दे रहे हैं कि ये जो किसी शख्स ने दूसरे को कतातु यदका कहा, इसको इकरार बिल माल करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वहादा बेखिलाफिमा इदा काल अली गैरी, और ये मसला बरखिलाफ है उसके जब किसी शख्स ने दूसरे से कहा कता तू या दका कि मैंने तेरा हाथ काट दिया, फाखरजा हुमा सही हतैनी, तो उस दूसरे शख्स ने अपने दोनों हाथ निकाले इस हाल में कि वो सही सलामत थे, है सुलम युजअल मजाजन अनिल इकरार बिल माली वल तिजामी ही, क्योंकि ये जो कौल है, ये जो कता तू या दका, ये वाला जो कौल है इसको इकरार बिल माल और इल्तिजाम माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता जी। इसको इकरार माल और इल्तिजाम माल, अपने ऊपर माल को लाजिम करना, इससे मजाज करार नहीं दिया जा सकता। वह इन कान अलकत सबबन लि वजूब इल माली, अगरचे हाथ का काटना यह माल के वाजिब होने का सबब है, यहां सबबियत वाला ताल्लुक भी मौजूद है, लेकिन फिर भी कतातु यदका को इकरार बिल माल करार नहीं दिया जा सकता। क्यों? कहते हैं लिअन्न अल-क़त्अ ख़तअन सबबुन लिवुजूबि मालिन मख़सूसिन, कहते हैं लिअन्न अल-क़त्अ ख़तअन, इसलिए क्योंकि गलती से हाथ काटना सबबुन, ये सबब है लिवुजूबि मालिन मख़सूसिन, एक मख़सूस माल के वजूब का जी। इसकी वजह से मख़सूस माल वाजिब होता है, और वह क्या है? अर्श है, इसकी वजह से मुतलक माल वाजिब नहीं होता। तो कहते हैं लिअन्न अल-क़त्अ ख़तअन, इसलिए क्योंकि गलती से हाथ काटना सबबुन लिवुजूबि मालिन मख़सूसिन, यह सबब है एक मख़सूस माल के वाजिब होने का, वहुवल अर्शु, और वो अर्श है, वअन्नहु युखालिफु मुतलक़ल माली फिल वस्फी, और ये जो अर्श है ये मुतलक माल के मुखालिफ है फिल वस्फी, वस्फ में, यानी दोनों का वसफ अलग अलग है, मुतलक माल जो इकरार करता है उसी पर लाजिम होता है, और कतातु यदके की वजह से जो माल वाजिब होगा वो तो अर्श है, वो तो पूरी आकिला यानी पूरे कबीले पर लाजिम होगा। तो कहते हैं वह अन्नहु युखालिफु मुतलकल माल फिल वस्फी, और ये जो अर्श है ये मुतलक माल के मुखालिफ है वसफ में, हत्ता वजब अलल आकिलति फी सनतैनी, यहां तक कि ये जो अर्श है ये वाजिब होता है अलल आकिलति आकिला पर, फी सनतैनी दो साल में। आकिला भाई आकला याकिलू का माना है दियत अदा करना, आकला याकिलू का क्या माना? दियत अदा करना, तो दियत अदा करने वाला आकिल है जी। आकिल का क्या माना? दियत अदा करने वाला, तो लिहाजा पूरा कबीला जो दियत अदा करने वाला है वो आकिला हुआ, आकिला। तो कहते हैं हत्ता वजब अलल आकिलति फी सनतैनी, यहां तक कि ये जो अर्श है ये आकिला पर वाजिब होता है, फी सनतैनी दो साल में, क्योंकि ये सुलुस से जायद है, एक हाथ काटा है तो निस्फे दियत आएगी, और निस्फे दियत सुलुस से दियत से जायद है, लिहाजा ये अब दो साल में अदा करना पड़ेगी। तो मालूम हुआ एक साल में ज्यादा से ज्यादा सुलुस से दियत अदा की जाती है, तो अगर सुलुस से ज्यादा हुई तो वो अगले साल में चली जाएगी, और अगर दो सुलुस हुई तो दो साल में अदा करनी है, लेकिन अगर दो सुलुस से कुछ और ज्यादा हो गई तो वो फिर तीसरे साल में चली जाएगी। तो कहते हैं ये जो अर्श है ये आकिला पर वाजिब होता है, फी सनतैनी दो सालों में, तो इसका वसफ ही अलग है, वला युमकिनु इस्बातुहु बिदून अल-क़त्अ, और ये जो अर्श है इसको हाथ काटे बगैर साबित करना मुमकिन नहीं, ये हाथ काटेगा तो फिर हाथ की दियत आएगी, बगैर हाथ काटे हाथ की दियत वाजिब नहीं हो सकती, और यहां तो उसने हाथ ही नहीं काटा, तो ये अर्श उस पर और उसके कबीले पर वाजिब भी करार नहीं दिया जा सकता जी। तो कहते हैं वला युमकिनु इस्बातुहु बिदून अल-क़त्अ, और ये जो अर्श है इसको बगैर हाथ काटे साबित करना मुमकिन नहीं है, वमा अमकन इस्बातुहु, और वो माल की जिसको साबित करना मुमकिन है, यानी माल मुतलक, वो माल जिसको साबित करना मुमकिन है, फलकत उलई सबी सबबिन लहू, तो हाथ का काटना उसका सबब नहीं होता, हाथ काटने से मुतलक माल नहीं आता, हाथ काटने से तो अर्श आता है, और अर्श बगैर हाथ काटे नहीं वाजिब हो सकता। तो जो अर्श है उसका सबब तो पाया ही नहीं जा रहा, और जो मुतलक माल है तो वो हाथ काटने की वजह से नहीं वाजिब होता भाई। तो हासिल है कलाम ये कि कतअतु यदका, इसका ना हकीकी माना मुमकिन है यहां और ना मजाजी माना। हकीकी माना क्यों नहीं मुमकिन, क्योंकि उस दूसरे के आदमी के दोनों हाथ सलामत हैं, और नीज मजाजी माना कि इसकी वजह से उस पर अर्श वाजिब कर दिया जाए, वो भी वाजिब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्श तो बगैर हाथ काटे वाजिब ही नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं वमा अमकना इस बात हु फलकत हो लई सभी सबब इन लहू, और वो माल की जिसको साबित करना मुमकिन है यानी माल मुतलक जो है, तो हाथ का काटना उसका सबब नहीं है, तो इस लफ्ज की वजह से उसको वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। ये जो लफ्ज है कतातु यदका, इसकी वजह से माल मुतलक को वाजिब करार नहीं दिया जा सकता भाई। अम्मल हुर्रियतु ला तख्तलिफु ज़ातन व हुक्मन फअमकना जअलुहु मजाज़न अन्हु, ये के एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। कोई मुअतरिज एतराज करता है कि आपने कहा कतअतु यदका, कतअतु यदका इसका हकीकी माना क्या कि मैंने तुम्हारा हाथ काट दिया, और मजाजी माना क्या कि ये शख्स माल का इकरार कर रहा है, तो आपने कहा कि ये जो कतअतु यदका इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कतअतु यदा की वजह से जो माल वाजिब होता है वो और किस्म का है, और इकरार माल की वजह से जो माल वाजिब होता है वो और किस्म का है। कतअतु यदा का इसकी वजह से अर्श वाजिब होता है माल मखसूस, और इकरार माल की वजह से मुतलक माल वाजिब होता है, तो दोनों मालों की सिफत ही अलग अलग है। तवज्जो है, तो ये एतराज जिक्र कर रहे हैं, तो आपने कहा कि कतअतु यदका इसको इकरार माल करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कतअतु यदा की वजह से जो माल वाजिब होता है उसकी सिफत और है, और इकरार माल की वजह से जो माल वाजिब होता है उसकी सिफत और है। तो यही बात तो हाजबनी के अंदर भी है, ये मुअतरिज एतराज कर रहा है। तो मुअतरिज एतराज करता है कि आपने हाजबनी को मजाज करार दिया हाजा हुर्रुन से, हाजबनी को आपने मजाज करार दिया हाजा हुर्रुन से। इमाम साहब के नजदीक जब हकीकी माना मुमकिन नहीं तो मजाजी माना किया जाएगा कि हाजा हुर्रुन, कि ये गुलाम आजाद है और गुलाम आजाद हो जाएगा। तो यहां पर भी एक हुर्रियत वो है जो हाजबनी की वजह से साबित होती है, और एक हुर्रियत वो है जो हाजा हुर्रुन की वजह से साबित होती है। तो दोनों हुर्रियतें भी मुख्तलिफ हैं, दोनों आजादियां मुख्तलिफ हैं। जब दोनों आजादियां मुख्तलिफ हैं तो एक को दूसरे से मजाज करार नहीं दिया जा सकता। जैसे कतअतु यदका की वजह से जो माल वाजिब हो रहा था वो था माल मखसूस, और इकरार माल की वजह से जो माल साबित होता है वो मुतलक माल है, तो आप यहां कतअतु यदा को इकरार माल से मजाज करार नहीं दे सकते। तो इसी तरह हाजबनी, इसके अंदर जो आजादी साबित होती है वो और किस्म की है, और हाजा हुर्रुन से जो आजादी साबित होती है वो और किस्म की है, तो आप हाजबनी को हाजा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दे सकते। भाई किस तरह और किस्म की है, कहते हैं हाजा हुर्रुन, इसकी वजह से मुतलकन गुलाम आजाद हो जाता है जी। इसकी वजह से मुतलकन गुलाम आजाद हो जाता है, मुतलकन आजादी उसमें साबित हो जाती है, और हाजबनी, इसके अंदर जो आजादी साबित होती है वो एहसान और इनाम के तौर पर साबित होती है। तो हाजबनी को हाजा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि दोनों के अंदर हुर्रियत में फर्क है। हाजा हुर्रुन की वजह से मुतलकन हुर्रियत और आजादी साबित हो जाएगी, जबकि हाजबनी की वजह से जो आजादी साबित होगी वो बतौर सिला के है, बतौर इनाम और एहसान के है, बतौर इनाम और एहसान के है। शरीयत ने हमें रिश्तेदारों के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है, बेटा होना ये एहसान और इनाम को वाजिब करता है कि इसके साथ एहसान किया जाए। तो ये जो आजादी साबित होगी ये बतौर एहसान के है। तो हाजा हुर्रुन की वजह से जो आजादी साबित हुई वो मुतलक आजादी है, और हाजबनी कहने की वजह से जो आजादी साबित हुई वो बतौर इनाम और एहसान के है, बतौर सिला के है। तो दोनों हुर्रियतों में फर्क आ गया, लिहाजा आप हाजबनी को हाजा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दे सकते। जैसे कतअतु यदका इसको आप इकरार माल से मजाज करार नहीं दे सकते। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिबे हिदाया, कहते हैं नहीं भाई, यहां हादा हुर्रुन से जो आजादी आती है और हाजा बनी की वजह से जो आजादी आती है, दोनों हुर्रियतों में कोई फर्क नहीं, न जात के एतबार से फर्क है और ना हुक्म के एतबार से फर्क है, दोनों हुर्रियतों की जात भी एक जैसी, हादा हुर्रुन की वजह से भी आजादी आई, और आजादी किसे कहते हैं, जवाले रिकियत, गुलामी खत्म हो गई। आजादी किसे कहते हैं, जवाल रिकियत, यानी गुलामी खत्म हो गई, तो हाजा हुर्रुन की वजह से भी जवाल रिकियत आएगा, गुलामी खत्म हो जाएगी, और हाजा अपनी कहने की वजह से भी जवाल रिकियत आएगा, गुलामी खत्म हो जाएगी, तो जात के एतबार से एक जैसी आजादी है, दोनों में जवाल रिकियत है, हादा हुर्रुन के अंदर भी और हाजबनी के अंदर भी जवाल रिकियत है, और नीज दोनों जगह हुर्रियत का हुक्म भी बिल्कुल एक जैसा है। गुलाम जो है उस पर पाबंदियां होती हैं, वो किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता, वो अपना निकाह खुद नहीं कर सकता, वो बैउ शिरा तिजारत वगैरह नहीं कर सकता भाई, उस पर पाबंदियां होती हैं, और नीज वो गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि गवाही आपने पढ़ा था जहां शुरू हमने किताबुन निकाह शुरू की थी, वहां आपने पढ़ा था कि निकाह के अंदर दो मर्दों का या एक मर्द और दो औरत का गवाह होना जरूरी है। मुसलमान का निकाह हो रहा है तो उसमें दो गवाहों का होना शर्त है, और वहां जिक्र हुआ था कि गवाह कौन बन सकते हैं, आजाद, आकिल, बालिग और मुसलमान। गवाह में जरूरी है कि वो आजाद हो, आकिल हो, बालिग हो और मुसलमान हो, तो जो आजाद ही नहीं है यानी गुलाम है, उसमें शहादत की अहलियत ही नहीं है, वो गवाही दे ही नहीं सकता। लेकिन जब ये गुलाम आजाद होगा तो अब ये अहले शहादत बन जाएगा, और जब ये अहले शहादत बन गया तो अब ये काजी भी बन सकता है, क्योंकि काजी भी, क्योंकि काजी बनना भी शहादत के बाब से है, क्योंकि काजी का फैसला दूसरों पर नाफिज होता है, जिस तरह गवाह का कौल दूसरे शख्स पर लाजिम होता है। मसलन जैद के पास एक गाड़ी है और एक आदमी आया और उसने आकर दावा कर दिया कि ये गाड़ी मेरी है, और उसने दो गवाह पेश कर दिए, उन गवाहों ने गवाही दे दी कि ये गाड़ी इस आदमी की है, तो देखो काजी फैसला कर देगा, वो गाड़ी उस आदमी को दे दी जाएगी, तो देखो वो जो गवाहों का कौल था वो जैद पर लाजिम हो गया, जैद पर नाफिज हो गया, गवाहों ने भी क्या कहा था, ये इस आदमी की गाड़ी है, तो काजी ने भी वही फैसला कर दिया, तो देखो गवाहों का कौल दूसरे पर लाजिम हो जाता है, इसी तरह काजी का फैसला भी सब पर लाजिम हो जाता है, सब पर नाफिज हो जाता है, तो मालूम हुआ फैसला करना, काजी होना, ये भी शहादत के बाब में से है। तो गुलाम को विलायत हासिल नहीं होती, वो किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं कर सकता, वो अहले शहादत नहीं है, वो अहले कजा नहीं है, लेकिन जब वो आजाद होता है वो अहले शहादत भी बन जाता है, वो अहले कजा भी बन जाता है, और उसको हर तरह की विलायत भी हासिल हो जाती है, वो तसर्रुफात कर सकता है भाई, तवज्जो है। तो लिहाजा हादा हुर्रुन कहने से भी आजादी साबित, हाजबनी कहने से भी आजादी साबित, ये दोनों आजादियां जात के एतबार से भी एक जैसी हैं, क्योंकि आजादी किसे कहते हैं, जवाल रिकियत को, और दोनों के अंदर जो आजादी आई है उसमें जवाल रिकियत है, और ये दोनों आजादियां हुक्म के एतबार से भी एक जैसी हैं, यानी हादा हुर्रुन कहने से जो आजादी साबित होगी उसके अंदर भी वो जो गुलाम है जब आजाद हो गया, अब वो अहले शहादत भी हो गया, वो अहले कजा भी हो गया, और वो अहले विलायत भी हो गया जी। और हाजबनी कहने की वजह से जब एक शख्स गुलाम आजाद होगा तो वो भी अहले शहादत भी हो जाएगा, वो अहले कजा भी हो जाएगा, और वो अहले विलायत भी हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, मालूम हुआ आपका ये कहना कि हादबनी को हादा हुर्रुन से मजाज करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्योंकि दोनों आजादियों में फर्क है, दोनों हुर्रियतों में फर्क है, तो हमने जवाब दे दिया कि नहीं, दोनों हुर्रियतों में कोई फर्क नहीं है, चाहे हुर्रियत हाजा हुर्रुन से आए, चाहे हुर्रियत हाजा बनी से आए, जात के एतबार से भी हुर्रियत एक जैसी और हुक्म और वसफ के एतबार से भी हुर्रियत एक जैसी है, लिहाजा हादा बनी को हादा हुर्रुन से मजाज करार दिया जा सकता है, लेकिन कतअतु यदका इसको इकरार माल से मजाज करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं अमल हुर्रियतु, बाकी आजादी जो है, ला तख्तलिफु जातं व हुक्मन, वो मुख्तलिफ नहीं होती जात और हुक्म के एतबार से, फअम का ना जालूहू मजाजन अनहू, लिहाजा बेटा होने को हुर्रियत से मजाज करार देना मुमकिन है, तर्जमा समझ में आया, फिर देख लीजिए तर्जमा। कहते हैं अम्मल हुर्रियतुला तख्तलिफ जातं व हुक्मन, तो आजादी जो है वो जात और हुक्म के एतबार से मुख्तलिफ नहीं होती। फअमकना जालुहु मजाजन अनहु, लिहाजा बेटा होने को आजादी से मजाज करार देना मुमकिन है, क्योंकि दोनों सूरतों में एक जैसी आजादी आती है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वलौ قال هذا ابي او امي ومثله لا يولد لمثله فهو على الخلاف لما بينا। अब इसका बरअक्स कर लें भाई, पहले आका ने गुलाम के बारे में कहा था हाजा बनी, अब गुलाम के बारे में कहता है हाजा अभी, ये मेरा बाप है, या बांदी है उसके बारे में कहता है हाजी ही उम्मी, ये मेरी मां है
जी।
और ये जो गुलाम और बांदी हैं, ये इस आका के हम उम्र हैं या आका से उम्र में छोटे हैं, यानी इस जैसा आका इन जैसे गुलाम या बांदी का बेटा नहीं हो सकता
जी।
इस जैसा आका इस जैसे गुलाम या बांदी का बेटा नहीं हो सकता। तो कहते हैं इस सूरत में भी मसला इसी तरह है जो हमने ऊपर बयान कर दिया। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि हाजा अभी, यहां हकीकी माना मुमकिन नहीं, क्योंकि इस जैसा आका इस जैसे गुलाम का बेटा नहीं हो सकता, तो फिर मजाजी माना भी नहीं किया जा सकता और यह कलाम लग्व होगा और बेकार होगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि यह कलाम अरबी एतबार से बिल्कुल सही है और अकलन यह मुमकिन भी है, अकलन मुमकिन भी है। यहां सिर्फ मुशारुन इले की वजह से माने आया कि इस जैसा गुलाम इस जैसे आका का बाप नहीं हो सकता, कोई बड़ी उम्र का गुलाम होता तो फिर वो इसका बाप हो सकता था। तो लिहाजा यहां हकीकी माना के अंदर माने आ गया, तो अब हम मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे और ये गुलाम या बांदी आजाद हो जाएंगे। तो कहते हैं वलौ قال هذا ابي او امي, और अगर आका ने कहा कि ये मेरा बाप है या ये मेरी मां है, वह मिसलुहु ला यूलद लिमिसलिह, और इस जैसा आका जो है उसको जन्म नहीं दिया जा सकता इस जैसे गुलाम या बांदी के लिए, फहुआ अला हादल खिलाफी, तो ये मसला भी इसी इख्तिलाफ पर है, लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी। इस मसले में भी उसी तरह इख्तिलाफ है। वलौ قال لصبي صغير هذا جدي, सूरत यह आका का एक गुलाम है और उससे उम्र में छोटा है, आका ने कहा हादा जद्दी, ये मेरा दादा है, ये मेरा दादा है, तो क्या इस सूरत में ये आजाद हो गया? नहीं। तो इसमें भी बास फुकहा ने लिखा है कि इसमें भी इख्तिलाफ है, इसमें भी इख्तिलाफ है, और जबकि बास कहते हैं कि बिल इत्तेफाक ये गुलाम आजाद नहीं होगा
जी।
ये गुलाम जो आका से उम्र में छोटा है और आका ने क्या कहा हादा जद्दी, ये मेरा दादा है या ये मेरा नाना है, तो इस सूरत में बास फुकहा फरमाते हैं कि इसमें भी साहिबेन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है, जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि इसके अंदर ये गुलाम बिल इत्तेफाक आजाद नहीं होगा, इमाम साहब के नजदीक भी आजाद नहीं और साहिबेन के नजदीक भी आजाद नहीं
जी।
बात समझ में आ गई। दलील साहिब हिदाया जिक्र फरमाएंगे। तो कहते हैं वलौ قال لصبي صغير, और अगर आका ने छोटे बच्चे के बारे में कहा हाजा जद्दी, ये मेरा जद है, मैंने बताया जद का लफ्ज़ आरमी में दादा नाना ऊपर जितने भी उसूल हैं मर्द उन सब के लिए इस्तेमाल होता है, तो कहा हाजा जद्दी, ये मेरा दादा है या ये मेरा नाना है, قيل هو على الخلاف, तो कहा गया है कि ये कौल भी उसी इख्तिलाफ पर है जैसे साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ गुजर गया। वकील, और कहा गया है ला यातिकु बिल इजमा, कि ये एक गुलाम जो है बिल इत्तेफाक आजाद नहीं होगा। इजमा से इजमाए उम्मत नहीं मुराद भाई, बल्कि हमारे तीनों अइम्मा का इत्तेफाक मुराद है। तो कहते हैं वकील ला यातिकु बिल इजमाई, और कहा गया है कि ये बिल इत्तेफाक आजाद नहीं होगा, लिअन्न हादल कलाम ला मूजब लहू फिल मिल्क इल्ला बिवासितिन, ये अच्छी तरह समझ लें। कहते हैं लिअन्न हादल कलाम, इसलिए क्योंकि ये जो कलाम है, ये जो आका ने कहा हादा जद्दी, ये मेरा दादा है, ला मूजब लहू, मूजब का माना है मुक्तजा और हुक्म, ला मूजब लहू, इस कलाम का कोई मुक्तजा नहीं है, फिल मिल्क आई फिल ममलूक, मिल्क बमाने ममलूक के है, यानी मस्तर बमाने इसमें मफूल के है, ला मूजबलहू फिल मिल की, इसका ममलूक में कोई मुक्तजा नहीं है, इल्ला बी वासितिन, मगर वास्ते के जरिए, वह हुवल अबू, और वो बाप है, वही गैर साबितिन फी कलामी ही, और यह वासिता तो आका के कलाम में साबित नहीं। फताजरा अयु झाला मजाजन अनिल मूजबी, लिहाजा मुताजिर हो गया, मुमकिन न रहा कि इसको मुक्तजा से या हुक्म से मजाज करार दिया जाए। भाई देखिए साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अगर कोई शख्स अपने हम उमर या अपनी उम्र से बड़े गुलाम को कहे हाजा बनी, तो इमाम साहब के नजदीक ये गुलाम आजाद हो जाएगा, क्योंकि हकीकी माना मुमकिन नहीं, तो मजाजी माना की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह अगर आका ने अपने हम उमर गुलाम को या अपने से छोटे गुलाम के बारे में कहा यह मेरा बाप है, तो इस सूरत में भी हकीकी माना तो मुमकिन नहीं, लिहाजा मजाजी माना मुतय्यन है, यह गुलाम आजाद हो जाएगा। तो बेटा होना या बाप होना यह ममलूक के अंदर तकाजा करता है आजादी का।
जी।
बेटा होना या बाप होना यह ममलूक के अंदर आजादी का तकाजा करता है। तो यहां पर भी एक छोटा सा बच्चा है, गुलाम है, उसको अपने आका ने कह दिया हाजा जद्दी, में यह मेरा दादा है।
जी।
तो इसके अंदर भी हाजा जद्दी कहना यह आजादी का तकाजा करता है।
जी।
ये आजादी का तकाजा करता है, लेकिन दरमियान में वासिता है, क्योंकि एक शख्स और उसके दादा के दरमियान बाप का वासिता होता है।
जी।
एक शख्स और दादा के दरमियान बाप का वासिता होता है।
जी।
तो जब आका ने अपने से उम्र में छोटे गुलाम को कहा है हाजा जद्दी, में ये मेरा दादा है, तो ये दादा होना भी इस गुलाम के अंदर आजादी का तकाजा करता है, लेकिन बाप के वास्ते से। किसके वास्ते से? भाई देखो, एक शख्स का अपने दादा से जो ताल्लुक है वो बाप के वास्ते से है। तो आका ने गुलाम को क्या कहा? हाजा जद्दी। ये जद्दी कहना इसमें तकाजा कर रहा है आजादी का, लेकिन हाजा जद्दी इसके अंदर बराह रास्त आजादी का तकाजा नहीं कर रहा, बल्कि एक दरमियान में वासिता आ रहा है, और वो वासिता क्या है? बाप। वो वास्ता क्या है? बाप है। तो बाप के वास्ते से ये इसके अंदर आजादी का तकाजा कर रहा है। तो हाजा जद्दी इस गुलाम के अंदर आजादी का तकाजा वास्ते के साथ कर रहा है, और वो वास्ता तो कलाम के अंदर जिक्र नहीं है, लिहाजा इससे गुलाम आजाद नहीं होगा। अगर वो वास्ता कलाम में जिक्र होता तो फिर गुलाम ने आजाद हो जाना था। तवज्जो है। अपने ममलूक के अंदर बेटा होना या बाप होने का वसफ हो तो यह तकाजा करता है उसकी आजादी का। तो हाजा जद्दी यह कहना भी आजादी का तकाजा कर रहा है, लेकिन दरमियान में वासिता चाहिए, और वो वासिता तो यहां कलाम के अंदर तो जिक्र नहीं। आका ने तो सिर्फ हाजा जद्दी कहा है, वो जो वासिता बीच में बन रहा है उसको जिक्र ही नहीं किया, लिहाजा ये गुलाम आजाद नहीं होगा। हां, अगर आका वो वास्ता जिक्र कर देता और यूं कहता हाजा जद्दी अबू अबी, हाजा जद्दी ये मेरा दादा है, अबू अबी यानी मेरे बाप का बाप, तो फिर गुलाम ने आजाद हो जाना था। तो हाजा जद्दी ये इस ममलूक के अंदर आजादी का तकाजा कर रहा है, लेकिन बाप के वास्ते से, और वो वास्ते का कलाम में जिक्र होना जरूरी है, और वो वास्ता तो कलाम में जिक्र नहीं, लिहाजा ये गुलाम आजाद नहीं होगा। लेकिन अगर उसने वास्ता जिक्र कर दिया, यूं कहा हादा जद्दी ये मेरा दादा है, अबू अबी यानी मेरे बाप का बाप, या अबू उम्मी मेरी मां का बाप, तो वास्ता भी जिक्र हो जाएगा, और फिर इस सूरत में गुलाम आजाद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देख लीजिए तर्जमा, वलौ काल अली सबी इन सगीर इन हादा जद्दी, और अगर आका ने छोटे बच्चे गुलाम से कहा यह मेरा दादा है, कील हुआ अलल खिलाफ, तो कहा गया है यह भी इख्तिलाफ पर है, यानी इसमें भी इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है, वकील ला यातिक बिल इजमाई, और कहा गया है कि बिल इतफाक ये गुलाम आजाद नहीं होगा, लिअन्न हादल कलाम ला मूजब लहू फिल मिल की, इसलिए क्योंकि ये जो कलाम है इसका कोई मुक्तजा और कोई हुक्म नहीं है, फिल मिल की ऐ फिल ममलू की, ममलूक के अंदर इस कलाम का कोई मुक्तजा नहीं है, इल्ला बिवासितिन, मगर वासते के जरिए, वहुअल अबू और वो वासिता अब है, वही गैर साबित तिनफी कलामी ही, और ये वासिता तो उस आका के कलाम में साबित नहीं यानी जिक्र नहीं है। फताजरा अयुच आला मजाजन अनिल मूजबी, लिहाजा मुताजिर हो गया, मुमकिन न रहा कि इस कलाम को मजाज करार दिया जाए, अनिल मूजबी इसके मुक्तजा से यानी आजादी से। बिखिलाफ इल उबूवती वल बुनूवती, बखिलाफ बाप होना और बेटा होना, ले अन्ना लहुमा मूजबन फिल मिल की, इसलिए क्योंकि उनका तो मुक्तजा होता है ममलूक में, बिन गैरी वासितिन बगैर वास्ते के, ये बगैर वास्ते के ममलूक के अंदर आजादी का तकाजा करते हैं। तो बेटा होना और बाप होना इनका मुक्तजा हुर्रियत है, आजादी है ममलूक के अंदर, ये ममलूक के अंदर आजादी का तकाजा करते हैं और बगैर वासिते के आजादी का तकाजा करते हैं। तो कहते हैं बिखिलाफिल उबूवती वल बुनूवती, बखिलाफ बाप होना और बेटा होना, उबूवत और बुनूवत ये मस्तर हैं भाई, तो मस्तर ही तर्जमा करेंगे। कहते हैं बिखिलाफिल उबूवती वल बुनूवती, बखिलाफ बाप होना और बेटा होना, ले अन्न लहुमा मूजबन फिल मिल की, इसलिए क्योंकि इनका मुक्तजा होता है फिल मिल की ममलूक में, मिन गैर वासितत इन बगैर वासिते के। वलौ काला हादा अखी, और अगर आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हादा अखी ये मेरा भाई है, तो ला यातिकु फी जाहिरी रिवायती, तो जाहिर रिवायत के मुताबिक ये आजाद नहीं होगा। जाहिर रिवायत के मुताबिक ये आजाद नहीं होगा, क्यों नहीं आजाद होगा? क्योंकि भाई के साथ जो रिश्ता है किसके वास्ते से है? बाप या मां के वास्ते से है, और वो रिश्ता और वो वासिता तो यहां जिक्र नहीं। तो भाई होना भी आजादी का तकाजा करता है, लेकिन वास्ते के साथ, और वो वास्ता कलाम में जिक्र होना चाहिए और वो यहां जिक्र नहीं है। तो कहते हैं वलौ काला हादा अखीला यातिकु फी जाहिरी रिवायती, और अगर आका ने गुलाम के बारे में कहा ये मेरा भाई है, तो वो आजाद नहीं होगा जाहिरी रिवायत में। वान अबी हनीफत रहमहुल्लाह तआला अन्नहु यातिकु, और इमाम साहिब से एक रिवायत है कि ये आजाद हो जाएगा। वजह रिवायतें निमा बयन्नाहु, और दोनों रिवायतों की वजह वो है जो हमने बयान कर दी। जाहिर रिवायत की वजह मैंने बयान कर दी कि हाजा अखी में आजाद नहीं होगा क्योंकि दरमियान में वासिता जो है वो जिक्र नहीं है, और दूसरी इमाम साहब से रिवायत है कि हाजा अखी के अंदर भी ये भाई ये जो ममलूक है आजाद हो जाएगा। वजह ये वही दलील जो शुरू में जिक्र की थी, क्योंकि ममलूक के अंदर जैसे बेटा होना यह सबब है आजादी का, इसी तरह ममलूक के अंदर भाई होने का वसफ भी साबित हो जाए तो यह भी सबब है आजादी का, यह सबब है आजादी का, और सबब बोलकर मुसबब का इरादा किया जाता है। या ममलूक के अंदर भाई होने का वसफ साबित हो तो उसके साथ हुर्रियत लाजिम है, तो उसके साथ हुर्रियत लाजिम है, तो लिहाजा यहां पर भी मलजूम बोलकर लाजिम का इरादा किया गया है भाई। तो यह माना है कि वह वजह रिवायतें निमा बयन्ना हो, और इन दोनों रिवायतों की वजह वो है जो हमने बयान कर दी। वलौ काला लिअब्दिही, और अगर आका ने अपने गुलाम से कहा हाजा बन्नती ये मेरी बेटी है, गुलाम खड़ा है मर्द है, आका कहता है हाजा बन्नती ये मेरी बेटी है, तो अब इस सूरत में गुलाम आजाद होगा या नहीं? तो कहते हैं इसके अंदर भी इख्तिलाफ है जी। इसके अंदर भी इख्तिलाफ है इमाम साहेब और साहिबैन का, और जबकि बास फुकहा फरमाते हैं कि यहां बिल इत्तेफाक ये आजाद नहीं होगा। भाई अगर आपको याद हो महर के बाद में एक मसला जिक्र हुआ था, एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और महर मुकरर करता है कि ये जो सामने सिरके का मटका है इसके इवज में तुम्हारे साथ निकाह करता हूं, औरत ने कबूल कर लिया और बाद में देखा गया तो उस मटके के अंदर तो शराब थी। अब यहां पर इसमें इशारा जमा हुआ हाजा ये वाला जो मटका है, और तस्मिया भी जमा हुआ, नाम भी जिक्र किया कि सिरका है इसके अंदर, तवज्जो है। तो इस मसले के अंदर साहिब हिदाय ने इख्तिलाफ जिक्र फरमाया था हमारे अइम्मा का, हमारे तीनों अइम्मा के दरमियान इसमें इख्तिलाफ है। अलबत्ता साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को सबसे आखिर में जिक्र किया था, यानी साहिब हिदाया ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह दी थी। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल यह था कि जब तस्मिया और इशारा जमा हो जाए, एक चीज का नाम भी जिक्र किया जाए और साथ इशारा भी किया जाए, तो जब तस्मिया और इशारा जमा हो जाएं तो फिर देखा जाएगा कि मुशारुन इले और मुसम्मा इन दोनों की जिन्स एक है या अलग अलग। मुशारुन इले जिसकी तरफ इशारा किया गया और मुसम्मा जिसका नाम लिया गया, तो मुशारुन इले और मुसम्मा दोनों की जिन्स एक है या जिन्स अलग अलग है। अगर दोनों की जिन्स एक है तो फिर मुशारुन इले का एतबार है, और अगर दोनों की जिन्स अलग अलग है तो फिर मुसम्मा का एतबार है। फिर मुसम्मा यानी जिसका नाम लिया गया है। और जिन्स का पता कैसे चलेगा कि जिन्स एक है या अलग, तो वो फरमाते हैं मकासिद को देखा जाएगा, एक चीज के मनाफिया को देखा जाएगा। अगर मनाफिया एक जैसे हैं तो ये एक ही जिन्स है, और अगर मनाफिया अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग जिन्से हैं। भाई तवज्जो है, दोनों के अगर मनाफिया अलग हैं तो अलग अलग जिन्से हैं। यहां पर इशारा किया, इशारा किया मटके की तरफ और उसमें शराब है, और जिक्र किया सिरके को, और शराब और सिरका अलग अलग जिन्से हैं, दोनों के मनाफे ही अलग अलग हैं। शराब नशावर है, हराम है, और सिरका हलाल है, जायज है, और उसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों के मनाफे अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग जिन्से हैं। और जब जिन्से अलग हो तो एतबार मुसम्मा का होता है, यानी जिसका नाम जिक्र किया, और शख्स ने नाम किसका जिक्र किया था, सिरके का, लिहाजा उस शख्स को मुसम्मा की कीमत देना पड़ेगी अगर वो ज़वातुल क़ियम में से है, और अगर वो मिसलियात में से है तो उसका मिसल देना पड़ेगा। तो यहां सिरका मिसलियात में से है, लिहाजा इसी मटके के बराबर सिरका देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदाय ने वहां इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह दी थी। यहां पर भी आका ने क्या कहा है, मर्द के गुलाम की तरफ इशारा किया और कहा हाजा बनती, ये मेरी बेटी है। तो हाजा इशारा हुआ मर्द की तरफ, और इबनती जिक्र किया मुअन्नस को, तो इशारा के साथ तस्मिया जमा हो गया। और मुशारुन इले और मुसम्मा की जिन्स अलग अलग है, मुशारुन इले मुजक्कर है और मुसम्मा मुअन्नस है। और याद रखो, इंसानों के अंदर मर्द और औरत अलग अलग जिनसे शुमार होती हैं। वजह यह कि मर्द और औरत की तखलीक के मकासिद अलग अलग हैं। मर्द की तखलीक का मकसद यह है कि वो पैगंबर हो सके, वो हाकिम और खलीफा हो सके, और वो हुदूद और किसास के मसलों में गवाह हो सके, इसी तरह वो जुम्मा और ईदेन की नमाजें कायम कर सके। और औरत के मकासिद और हैं, औरत घर संभालती है, औरत मर्द के लिए बच्चों को जन्म देती है, तो मर्द के मकासिद और औरत के मकासिद और हैं, लिहाजा ये दोनों अलग अलग जिन्सें शुमार होंगी। तो यहां पर आका ने इशारा किसकी तरफ किया, गुलाम की तरफ, वो मर्द है, और जिक्र किसको किया, बेटी को, यानी मुअन्नस को। तो दोनों की जिन्सें अलग हैं। जब मुशारुन इले और मुसम्मा की जिन्स अलग हो तो एतबार मुसम्मा का होता है, और मुसम्मा तो मुअन्नस है, और मुअन्नस तो यहां मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये आका का कलाम लग़्व चला जाएगा, इसका कोई एतबार नहीं है भाई, लिहाजा ये गुलाम आजाद नहीं होगा बिल इत्तेफाक भाई। ये बास फरमाते हैं इसमें आका ने अपने गुलाम की तरफ इशारा करके कहा हाजब नती, तो बास को कहा क्या फरमाते हैं, इसमें इमाम साहब और साहिबेन का इख्तिलाफ है। और बाजों ने कहा है कि नहीं, ये बिल इत्तेफाक ये गुलाम आजाद नहीं होगा, क्योंकि इसमें इशारा और तस्मिया जमा हो गए, और जब इसमें इशारा और तस्मिया जमा हो जाए और जिनसे अलग अलग हो मुशारुन इले और मुसम्मा की, तो फिर इस सूरत में मुसम्मा का एतबार होता है, मुसम्मा के साथ हुक्म का ताल्लुक होता है, और मुसम्मा तो मुअन्नस है, और मुअन्नस तो यहां मौजूद ही नहीं है, लिहाजा ये आका का कलाम लग्व चला जाएगा, इसका कोई एतबार नहीं है भाई। तो कहते हैं वलौ काला लिअब्दिही हाज़ा बनती, और अगर आका ने अपने गुलाम के बारे में कहा हाज़ा बनती, ये मेरी बेटी है, فقد قيل على الخلاف, تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے, یعنی اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے. وقد قيل هو بالاجماع, اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ بالاجماع ہے, یعنی غلام آزاد نہیں ہوگا. لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى, اس لیے کیونکہ مشار إليه جو ہے وہ مسمى کی جنس میں سے نہیں ہے. مشار إليه مذکر ہے, مرد ہے, اور مسمى مؤنث ہے, عورت ہے. فتعلق الحكم بالمسمى, تو حکم کا تعلق مسمى کے ساتھ ہوگا, جنسیں الگ الگ ہیں. وہ معدوم, اور مسمى یعنی مؤنث تو یہاں معدوم ہے بھائی, وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. فلا يعتبرو, لہذا اس کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نہ حقیقی معنی ہو سکتا ہے اور نہ مجازی معنی. تو فلا يعتبرو, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وقد حققناه في النكاح, اور تحقیق یہ ہم نے ثابت کیا تھا نکاح میں, نکاح کے اندر یہ باب ذکر ہوئی تھی, باب المہر کے اندر. یہ یوں ترجمہ کر لیں, وقد حققناه في النكاح, اور تحقیق ہم نے اس کی تحقیق کی تھی کتاب النکاح میں, اس مسئلے کی پوری تفصیل ہم نے وہاں بیان کی تھی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, چلیے بس بھائی. هذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.